أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير یہ دو آیات کریمہ جن کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ نساء اور سورہ البقرہ سے لی گئی ہیں. پہلی آیت سورہ نساء سے ہے اور دوسری البقرہ سے. ان دونوں میں حسد کا ذکر ملتا ہے. قرآن کریم میں حسد کا ذکر اس کے علاوہ تین دوسری جگہوں پر آتا ہے. ایک سورہ فتح میں اور دو مرتبہ سورہ فلق میں. ایک طرف تو تعجب ہوتا ہے کہ صرف پانچ دفعہ اس برائی کا ذکر ہے جو کہ بہت ہی خطرناک اور گہری امراض سے تعلق رکھنے والی برائی ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں بکثرت فساد پیدا ہوتے ہیں. دوسری طرف خود قرآن کریم اس کو اہمیت بھی اتنی دیتا ہے کہ آخری تین صورتوں میں جن میں عملاً سارے قرآن کریم کا خلاصہ ہے اور جن میں آخری زمانے کے نہایت ہی ہولناک عالمگیر فتنوں کا ذکر ہے اور ان کے خلاف متنبہ کیا گیا ہے, ان میں جو تین ہتھیار شیطان حق کے مقابل پر اختیار کرے گا ان میں سے ایک حسد بھی بیان فرمایا گیا ہے. من شر غاسق اذا غسق ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. तो जहां तक अहमियत का ताल्लुक है, हसद को इस नुक्ते निगाह से गैर मामूली अहमियत दी गई है कि आखिरी जमाने में जो हक व बातिल की आखिरी फैसला कुन लड़ाई होने वाली है, उनमें शैतान इन तीन हथियारों से लेस होकर तुम्हारे सामने आएगा। दरअसल सिर्फ चंद मर्तबा हसद को जिक्र करने की हिकमत यह है कि हसद खुद एक पोशीदा बीमारी है और इसका इजहार मुख्तलिफ दूसरी बीमारियों की सूरत में होता है। जिन दूसरी बीमारियों की सूरत में हसद जलवा दिखाता है, उनका बकसर जिक्र कुरान करीम में मौजूद है। और हसद चूंकि खुद मख्फी रहता है, इसलिए हसद को भी बिलमूम मख्फी रखा गया। चुनाचे बुग्ज हसद के नतीजे में पैदा होता है, हसद के नतीजे में जुल्म और तादी पैदा होते हैं, हसद के नतीजे में और बहुत सी ऐसी माशरती बुराइयां वजूद में आती हैं जिनकी तह में हसद का जज्बा कार फरमा होता है, लेकिन बिलमूम दिखाई नहीं देता, बल्कि बाज दफा ऐसे मख्फी तौर पर काम करता है कि खुद हासिद को भी पता नहीं होता कि मैं क्यों ये हरकत कर रहा हूं। और बसा औकात वो नेकी के लिबास में वो हरकत करता है, हालांकि दरअसल उसकी पुश्त पर हसद जोर मारता है, हसद अंगेख्त करता है, हसद उसे उस बदी पर तरगीब दिला रहा होता है। हसद का जो हमला कुरान करीम के मुतालिया से मालूम होता है, वो दो तरह पर है। एक अंदरूनी तरह पर, यानी मुसलमानों के मुआशरे पर खुफिया तौर पर हसद हमला करता है, और अक्सर बुराइयां जो मुआशरे की हैं उनमें अगर सारी नहीं तो बहुत सी हसद के अंदर जड़ें रखती हैं और हसद के साथ पैवस्ता होती हैं। और बैरूनी तौर पर भी मोमिनों की जमात पर हसद हमला करता है। बैरूनी हमले की निशानदेही जहां फरमाई गई, उनमें से ये दो आयात हैं जिनकी मैंने आपके सामने तिलावत की है। फरमाया, हम यहसुदून नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिह, कि जब अल्लाह सोसाइटी में से किसी पर फजल फरमाता है, या चंद बंदों को या चंद कौमों को या चंद नस्लों को अपने फजल के लिए चुन लेता है, तो लोग इस बिना पर उनसे हसद शुरू कर देते हैं कि खुदा ने इनको अपने फजल के लिए चुन लिया है। लेकिन उनका यह हसद उन लोगों की तरक्की पर जर्रा भर भी असरअंदाज नहीं होता जिनको खुदा ने अपने फजल के लिए चुन लिया। फरमाया, फकद आतैना आला इब्राहिम अल किताब वल हिकमता व आतैना हूं मुल्क अजीमा, इन हासिदों के बावजूद इसके कि लोग जलते रहे इस आग में कि क्यों इब्राहिम पर ऐसे फजल नाजिल हुए, क्यों उसकी औलाद पर इतने फजल नाजिल हुए, क्यों दुनिया में तरक्की करते चले गए। फकद आतैना आला इब्राहिमा, हमने इब्राहिम ही पर नहीं उसकी आल पर भी फजल नाजिल फरमाए, उनको किताब दी, उनको हिकमत अता फरमाई, वह आतैना हूं मुल्क अजीमा, और उन्हें अजीम रूहानी सल्तनत अता फरमाई। मुल्क अजीम में कुरान करीम के मुहावरे के मुताबिक अव्वल दर्जे पर रूहानी सल्तनत मुराद होती है। दूसरी जगह कुरान करीम मोमिनों की जमात से बिलउमूम कुफार के हसद का जिक्र करते हुए फरमाता है, वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बाद ईमानकुम कुफारा हसदम मिन इंद अनफुसिहिम मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हक फाफू वस्फहू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रे इन्नल्लाहा अला कुल्ले शयइन कदीर। अहले किताब में से अक्सर ये चाहते हैं, या बहुत बड़ी तादाद उनकी ये चाहती है कि काश तुम मुर्तद होकर ईमान से हटकर कुफर की तरफ लौट जाओ। ईमान हासिल करने के बाद फिर कुफार में शामिल हो जाओ, ऐसा क्यों है? फरमाया हसदम मिन इंद अनफुसहिम, ये उनके अंदर जो हसद पाया जाता है उसकी बिना पर है। जहां और बातों के अलावा ये अमर काबिल गौर है कि मिन इंद अनफुसहिम कहने की क्या जरूरत थी, हसद का जिक्र काफी क्यों नहीं था? अपने अंदर के हसद से ही इंसान बदियां करता है, मुखालफतें शुरू कर देता है, दूसरे का बुरा चाहता है, सबके हसद उनके अंदर होते हैं। तो हसद मिन इंद अनफुसहिम में इस बात पर जोर क्यों दिया गया? जोर इस वजह से दिया गया कि बाज दफा हसद किसी ऐसी दुश्मनी के नतीजे में जड़ पकड़ता है जिस दुश्मनी को पैदा करने में फरीक़े सानी जिम्मेदार होता है, और जब एक दफा दुश्मनी पैदा हो जाए तो फिर उसके नतीजे में हसद उस पहली दुश्मनी के जवाब में पैदा होता है। जब दुश्मनी चल पड़ती है तो फिर दोनों तरफ जिद और तासुब और हसद के मामला चलते हैं। मिन अंदे अनफों से हम कहकर मोमिनों की मासूमियत का इजहार फरमाया गया है, उनको कुल्लियतन बरियुज़िमा करार दिया गया है। फरमाया कोई भी ऐसी हरकत मोमिनों की तरफ से नहीं होती जिसके नतीजे में दुश्मन उन पर हसद शुरू करे, और ना मोमिन उनसे हसद करते हैं, महज यकतरफा मामला है, ना वजह जवाज है, ना मोमिनों की ये सिफत है कि वो भी हसद करें, और ये हसद यकतरफा रहता है, मिनंद अनफुसहिम एक ही तरफ से चलता है। इसमें एक और पहलू भी काबिल गौर है, ये है कि मोमिन और काफिर की तबलीग का फर्क दिखा दिया गया। जब काफिर मोमिन को तबलीग करता है और कहता है हमारी मिल्लत में लौट आओ, तो उसकी मोहब्बत की वजह से नहीं करता, उसको बचाने की खातिर नहीं करता, बल्कि हसद और बुग्ज़ की बिना पर करता है। और ये जो फितना इर्तदाद कहकर बड़ा अजीम शान एक फसाद खड़ा कर दिया जाता है कि मुर्तदीन को वापस लाओ, नहीं तो कत्ल करो, नहीं तो घरों से निकालो, इस सब की बिना हसद है, कोई मोहब्बत या फलाह व बहबूद हरगिज इसकी बिना नहीं है, किसी को फितने और हलाकत से बचाने की ख्वाहिश इसकी बिना नहीं है, एक जलन है कि ये लोग फैल रहे हैं, ये लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि हम मुस्बित ज़राए से इनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस दौड़ में इनसे आगे नहीं निकल सकते, इसलिए इनको जबरदस्ती कम करने का यही तरीका है कि इनको तलवार के जोर से मुर्तद करो और इनको कम करते चले जाओ। अगर हम नहीं बढ़ सकते तो ये कम हो सकते हैं। ये मिन इंद अनफों से हमने बताया कि महज उनकी तबलीग के पीछे ये जज्बे कार फरमा होते हैं। जहां तक मोमिन का ताल्लुक है, मोमिन को इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि दुश्मन पे खुदा के कोई फजल नाजिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। मोमिन को तो बस एक लगन होती है कि जितने ज्यादा से ज्यादा बनी नौ इंसान को वो जुल्म और हलाकत की राह से बचा सकता है बचा ले, जितनों को खुदा की राह पर खींच के ला सकता है उनको खींच लाए। और इस जज्बे में मोहब्बत और फिदाइयत कार फरमा होते हैं, इस जज्बे में उनकी बहबूद जोर मारती है और दिलों को मजबूर करती है कि दुख उठाकर भी गैरों को अपनी तरफ खींच के लाओ। चुनाचे दोनों के हथियार बदल जाते हैं, हसद भी वो पोशीदा है और मोहब्बत भी दिल में पोशीदा होती है, लेकिन ये दोनों जब जाहिर होते हैं तो अपने हथियारों के जरिए पहचाने जाते हैं। हसद के जरिए जो तबलील है उसमें जुल्म और सितम और जबर और तलवार ये नुमाया हथियार हैं। हसद तो दिल में छुपा हुआ है, वो नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन जोर के साथ, आग लगाने की धमकी के साथ, घरों से निकाल देने की धमकी के साथ, कत्ल की धमकी के साथ جو تبلیغ کی جاتی ہے قرآن کریم کی روح سے وہ حسد کے نتیجے میں ہے, اور یہ فتنہ ارتداد اللہ کے نزدیک ایک مردود فتنہ ہے. اس کے برعکس جب مومن کا تبلیغ کرتے ہیں, کیونکہ وہ محبت کی بنا پر کرتے ہیں, اس لیے لا اکراہ فی الدین کا اطلاق ان کی ہر چیز میں, ان کی ہر حرکت, ان کی ہر سکون میں ملتا ہے. وہ دکھ دے کر کسی کو مومن نہیں بنا رہے ہوتے, بلکہ دکھ اٹھا کر مومن بنا رہے ہوتے. وہ دوسروں کی جانیں لے کر ان کو تبلیغ نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ اپنی جانیں پیش کر کے تبلیغ کر رہے ہوتے. کتنا زمین آسمان کا فرق ہے, کتنی دو مختلف متقابل رہے ہیں ایک دوسرے کے, ایک کو دوسرے سے ایک کا ایک کے دوسرے کے ساتھ اشتباہ کا کوئی سوال ہی باقی نہیں چھوڑا خدا تعالیٰ نے. ایسی عظیم کتاب ہے, چھوٹے چھوٹے باریک اشاروں میں بڑے بڑے دقیق مضمون کھولتی چلی جاتی ہے. پھر فرمایا حسد من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. یہ تو بہت بڑا اعلان ہے اور بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ان پر حق خوب واضح ہو چکا تھا, تبین ہو چکا تھا حق کا, پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے کیوں اپنی ہلاکت کی راہ اختیار کی, یہ سوال اٹھتا ہے. قرآن کریم فرما رہا ہے انہوں نے یہ طریق مخالفت اس کے باوجود اختیار کیا کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا تھا. اور بظاہر یہ عجیب بات لگتی ہے کہ کسی پر حق ظاہر ہو گیا ہو اور پھر اس کے باوجود حق کی مخالفت کرے, اس کے باوجود اپنے لیے ہلاکت کی راہ اختیار کرے. حسد اس مسئلے کی کنجی ہے. جب آپ حسد پر غور کرتے ہیں تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے. جب کسی دوسرے سے حسد شروع ہو جائے تو وہاں انتقام اور بغض کا جذبہ اتنا غالب آ جاتا ہے کہ اپنا نقصان کر کے بھی دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے تو انسان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اگر ممکن ہو کہ خود بھی ڈوبے اور غیر کو بھی لے ڈوبے, تو اگر حسد کا جذبہ پیچھے ہے تو بعض دفعہ یہ جذبہ بھی حسد دکھاتا ہے کہ غیر کے ساتھ اپنی ہلاکت بھی انسان مول لے لیتا ہے. چنانچہ اردو میں ایک محاورہ ہے, شریکے کا دانا سر دکھتے بھی کھانا, کہ شریکے کو نقصان پہنچ جائے اس کا رزق کم ہو جائے, اس لیے اگر اپنے آپ کو وہ ہضم نہ بھی آئے, ہضم نہ بھی ہو, موافق نہ بھی آئے, تو شریکے کا کھانا اس غرض سے ضرور کھانا ہے کہ وہ کم ہو جائے. تو قرآن کریم نے لفظ حسد کے تابع اس مضمون کو کھول دیا کہ حسد آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے, حسد اپنی بھلائی کی تمیز اٹھا دیتا ہے, اور جب حسد غالب آ جائے تو حسود کی آنکھ تنگ ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بھلائی کی بھی نہیں دیکھ سکتے. اس لیے حق دیکھنے کے باوجود بھی پھر وہ اپنی ضد پر قائم ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے ضرور اس حق کو نقصان پہنچا کے چھوڑنا ہے. اور دوسرے معنی اس کے یہ ہوں گے, من بعد ما تبین لهم الحق, اس وقت اس وجہ سے وہ ارتداد کا فتنہ شروع کرتے ہیں کہ ما تبین لهم الحق, وہ جان چکے ہوتے ہیں کہ اب اگر ہم نے زبردستی ان کو نہ روکا تو یہ ضرور غالب آ جائیں. حق کھل گیا سے معنی ہے حق کا غلبہ کھل گیا, صاف نظر آنے لگ جاتا ہے روز روشن کی طرح کہ اب تو یہ آئے کہ آئے, اب کوئی دنیا کی طاقت ان کے اس غلبے کی حرکت کو روک نہیں سکتی, سوائے اس کے کہ تلوار کا جبر اختیار کیا جائے, حکومتوں کا جبر اختیار کیا جائے, ضد اختیار کی جائے, ہر قسم کی دشمنی کے ذریعے, فتنہ و فساد کے ذریعے ان کو روکنے کی کوشش کی جائے. جہاں تک دلائل کا تعلق ہے, جہاں تک منطق کا تعلق ہے, جہاں تک کتابی اسناد کا تعلق ہے, یہ لوگ تو بہرحال غالب آنے والے لوگ ہیں. تو حق سے مراد یہاں یہ حق بھی ہو سکتا ہے کہ حق و باطل کی جنگ میں یہ حق ان پر کھل جاتا ہے جب کہ اب یہ لوگ بہرحال غالب آ کر رہیں گے, اس وقت پھر وہ حسد کے ذریعے تمام مخالفانہ کوشش شروع کر دیتے ہیں, جن کی تان ارتداد کی کوشش پر ٹوٹتی ہے, بس جہاں فتنہ ارتداد کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے وہاں ہر جگہ حسد کا ذکر نہیں. اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ حسد کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ حسد یہاں بتا دیا کہ حسد اس کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے، مخفی ہوتا ہے. جہاں غیظ و غضب کا ذکر ملتا ہے، جہاں عناد کا ذکر ملتا ہے، جہاں تعدی کا ذکر ملتا ہے، وہاں ہر جگہ حسد کا ذکر نہیں، لیکن حسد اس کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے. فرمایا فافو وصفہو حتی یاتی اللہ بامرہ. مومن کی صفات کو کافر کی صفات سے کتنی شان کے کتنے نمایاں امتیاز کے ساتھ الگ کر کے دکھا دیا. اس حسد کے مقابل پر مومن کو حسد کی اجازت نہیں دی گئی. اس جبر کے ذریعے مرتد کرنے کی مہم کے مقابل پر قرآن کریم نے جبر کے ذریعے مرتد کرنے کی مہم چلانے کی اجازت نہیں عطا فرمائی. فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ حسد کے ذریعے تمہارے خلاف جبری ارتداد کی مہم چلائی جا رہی ہے، فافو وصفہو، تم درگزر کرو اور عفو سے کام لو، عفو سے کام لو اور درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے امر کو غالب فرما دے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مومن کا کام بھلائیوں کے میدان سے ہٹنا نہیں، بھلائیوں کے میدان میں جو اس کے قدم جمے ہوتے ہیں ان میدانوں سے اگر اس کے قدم اکھڑ جائیں تو یہ اس کی شکست ہے. اس لیے نیکیوں کے میدان میں ثابت قدم رہنا یہی مومن کے ہتھیار ہیں، اور اگر مومن اپنی نیکیوں کے میدان میں ثابت قدمی دکھاتا ہے تو پھر دشمن کی شکست یقینی ہے، کیونکہ پھر انسانی کوششوں کے ذریعے دین کا غلبہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ خود اپنے امر کو غالب فرماتا ہے. فرمایا پھر انتظار کرو، شرط یہ ہے کہ نیکیوں کے اوپر تم نے ثابت قدمی دکھانی ہے، نیکیوں کے اوپر استقلال دکھانا ہے، عفو سے کام لو، درگزر سے کام لو، اور جم کے بیٹھ جاؤ اپنے موقف کے اوپر، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم کو غالب کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. چنانچہ قرآن کریم میں جہاں دور آخر میں حاسد کے حسد سے بچنے کی دعا سکھائی، وہاں حاسد کے حسد کے اظہار کے طریقے بھی ہمیں قرآن کریم نے بتا دیے کہ کس کس طرح یہ حسد ظاہر ہوگا اور کس طرح یہ حسد انکار پر منتج ہوگا، اور خدا تعالیٰ جتنے تم پر فضل فرماتا چلا جائے گا اتنا ہی غیظ و غضب دشمن کا بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کے سب کے پیچھے جذبہ حسد کا جذبہ کار فرما ہوگا کہ کیوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے، کیوں ان پر فضل فرماتا چلا جا رہا ہے. اور علاج کیا ہے؟ عفو سے کام لیں، انتقام سے کام نہ لیں، درگزر سے کام لیں، اور کامل یقین کے ساتھ اللہ کی طرف سے فتح اور غلبہ کے آنے کا انتظار کریں اور اللہ سے ان کے شر سے پناہ مانگتے چلے جائیں. یہ مضمون تو بالکل کھلا کھلا اور واضح ہے، ہر انسان کو یہ بات سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ الہی جماعتوں کے خلاف ایک حسد پیدا ہوتا ہے اور وہ پھر بالآخر حد سے زیادہ ظلم کے طریقوں پر منتج ہو جاتا ہے. لیکن حسد کا حملہ مومنوں کی جماعت کے اندر ہر طرف سے، ان کے گھروں میں، ان کی گلیوں میں، ان کے آپس کے تعلقات کے ہر دائرے میں شیطان کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے، اور بسا اوقات انسان اس کی آنکھیں بند کر لیتا ہے. اس لیے جو دوسرا پہلو ہے حسد کے حملوں کا، جماعتی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی طرف بھی جماعت کو بار بار متوجہ کیا جائے. میں تقریباً 3 سال پہلے خطبے میں اسی مضمون کی طرف جماعت کو متوجہ کیا تھا. آج پھر فذکرن نفات ذکرہ کی ہدایت کے تابع اس مضمون کو چھیڑا ہے. جہاں تک غیروں کے حسد کا تعلق ہے, اللہ تعالیٰ کا آپ سے وعدہ ہے کہ ان کے شر سے وہ آپ کو محفوظ رکھے گا. جہاں تک غیروں کے حسد کا تعلق ہے, اللہ تعالیٰ کا آپ سے وعدہ ہے کہ ان کے حسد کے باوجود خدا تعالیٰ آپ پر مزید فضل نازل فرماتا چلا جائے گا. لیکن حسد کرنے والی سوسائٹی سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں, حسد کرنے والے دلوں سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. بس اگر حسد کے جذبات مخفی طور پر, جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, یہ ایک مخفی جذبہ ہے اور ایسا ظالم ہے جو شیطان کی صفت کے مطابق چھپ کر حملہ کرتا ہے, اسی لیے بہت کم اس کا ذکر لفظ حسد کے ساتھ ملتا ہے, اس کے مظاہر کا ذکر بکثرت قرآن کریم میں موجود ہے. اس لیے حسد کے خلاف بار بار متنبہ کرنے کی ضرورت ہے, اور کس طرح یہ بھیس بدل کر داخل ہوتا ہے یہ سمجھانے کی ضرورت ہے, اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے حسد کے خلاف اپنے دلوں کی اور اپنے گھروں کی حفاظت نہ کی تو حسد کی بیماری کا آخری نتیجہ انکار پر منتج ہوا کرتا ہے. حسد کے نتیجے میں پھر وہ حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں جو غیروں کی حرکتیں قرآن کریم نے کھول کر آپ کے سامنے بیان فرمائی ہیں. پھر وہ سوسائٹی جو حسد کی شکار ہو جاتی ہے بالآخر انہی لوگوں میں سے خدا کے منکرین, اس کے پیاروں کے منکرین, نیک بندوں کی مخالفت کرنے والے پیدا ہونے لگ جاتے ہیں. اس لیے ایک بہت ہی خطرناک زہر ہے جس کے خلاف ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے, ہر طرح سے اپنی سوسائٹی کو اس بد زہر کے اثر سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میں تو دیکھتا ہوں کہ بہت سی نیکیوں کے بھیس میں حسد کا جذبہ کار فرما دکھائی دے رہا ہوتا ہے. گھروں کے معاملات میں, بہو اور ساس کے معاملات میں, بھائی بہنوں کے معاملات میں, خاون بیوی کے معاملات میں, ایک خاندان کے دوسرے خاندان سے تعلقات کے معاملات میں, تجارتوں میں, نوکریوں میں, کون سا زندگی کا شعبہ ہے جہاں آپ کو بہت سی بدیوں کے پیچھے چھپا ہوا کمین گاہوں میں مخفی حسد نظر نہ آئے؟ جماعت کے معاملات میں اب نیکیوں پہ بھی حسد حملہ کر رہا ہوتا ہے اور نیکی کے لباس میں حسد حملہ کر رہا ہوتا ہے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ چندوں کی توفیق عطا فرماتا ہے, بڑی کثرت سے مالی قربانی کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں بعض دوسرے لوگ دعائیں کرتے ہیں, انکسار کے ساتھ خدا کے حضور جھکتے ہیں کہ اے خدا ہماری بھی تمنائیں پوری کر, ہمیں بھی قربانی کی توفیق عطا فرما. اور بعض دوسرے دوست انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ان کی کوئی برائی پکڑی جائے تو ہم پھر حملہ کریں, ہم بتائیں کہ اچھا یہ مالی قربانی والے اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اور پھر یہ کہیں کہ جماعت تو بس اموال کی حرص میں مبتلا ہے, جو مالی قربانی کر دے وہ نیکی سمجھی جاتی ہے اور دوسری چیزوں کی طرف پرواہی کوئی نہیں, نظر ہی کوئی نہیں ہے باقی باتوں کی طرف. اب یہ دو رد عمل کتنے مختلف ہیں. ایک حسد من انفسہم کا رد عمل ہے, من اند انفسہم کا رد عمل ہے, اور ایک تقوی کا رد عمل ہے, حسد سے خالی رشک کا, نیکیوں کی حصول کی تمنا کا رد عمل ہے. چنانچہ اکثر تنقید جس کو آپ تخریبی تنقید کہتے ہیں, جب آپ اس کی چھان بین کریں, اس کا تجزیہ کریں, تو اس کی جڑیں آپ کو ہمیشہ حسد میں دکھائی دیں گی. اگر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے مالی قربانی کی توفیق دی ہے تو جن کے پاس وہ توفیق نہیں, جن کو وہ توفیق نصیب نہیں, ان کے لیے اگر وہ تقویٰ رکھتے ہوں تو سوائے اس کے کوئی راہ نہیں کہ اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. لیکن حاسد آدمی یہ رد عمل نہیں دکھاتا, وہ اس سے بھی جلتا ہے, ان لوگوں سے بھی جلتا ہے جو ان قربانیوں کے ساتھ کے نتیجے میں ان سے محبت کرنے لگتے ہیں, ان سے حسن سلوک کرتے ہیں, اور اس کی تمنا اس کو برا دیکھنا ہوتا ہے, دیکھنا ہوتی ہے. حسد کرنے والا کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا, کسی کو اچھا نہیں دیکھ سکتا, یہ اس کی بنیادی صفت ہے جو ہر حسد میں آپ کو نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہے. کسی کو بھلائی پہنچے تو یہاں تکلیف ہو جاتی ہے, किसी को तकलीफ पहुंचे तो यहां खुशी बन जाती है। तो जब मजमूनों मजमून बिल्कुल बरक्स हो जाए, एक तरफ ऊंचा है तो दूसरी तरफ नीचा हो जाए, एक तरफ नीचा है तो दूसरी तरफ ऊंचा हो जाए, ये करिश्मा हसद दिखाया करता है। फिर खुदा ताला बाज सिलसिले के कारकुनों को खिदमत की तौफीक बख्शता है, उसके नतीजे में वो आगे आ जाते हैं, उनसे काम ज्यादा लिए जाते हैं, उन पर ज्यादा एतमाद किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन बातों को देखकर उनके लिए दुआएं करते हैं, उनसे मोहब्बत करने लग जाते हैं, हालांकि बजाय उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, उनको प्यार के खतूत लिखते हैं, उनकी खिदमत की तमन्ना दिल में पैदा हो जाती है, और फिर ये दुआ करते हैं कि काश हमें भी तौफीक मिले, हम भी इसी तरह अपनी जानी कुर्बानी करें, वक्त की कुर्बानी करें। और कुछ लोग हैं जो जलते जाते हैं आग में, अपनी आग में वो दिन रात भस्म हो रहे होते हैं कि ये देखो इन लोगों को बड़ा आगे किया जा रहा है, ये तो बड़े रियाकार लोग हैं, इनका काम सिवाय इसके कि चौदह राहत इख्तियार करें, आगे कामों में बढ़ें, हर चीज पर कब्जा कर लें, और कोई काम ही नहीं इनका। और फिर इंतजार में रहते हैं उन बेचारों से, जहां कोई गलती हो उसको पकड़ लेते हैं, उसको पीसते हैं, उसको रगड़ रगड़ के इस तरह सारी जमात में उसको मुश्तहिर करते हैं कि आदमी हैरान हो जाता है कि आखिर क्या वजह थी। उससे बड़ी गलतियों में खुद मुबतला होते हैं, लेकिन सिलसिले के कारकुन की छोटी गलती भी बर्दाश्त नहीं होती। वजह यह है कि मिन इंद अनफुसेन, चूंकि हसद है दिल के अंदर, इसलिए वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता जहां किसी चीज कोई ऐसा शख्स जिस पर खुदा का फजल हुआ हो उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। अब खोल कर बयान कर दिया जाए तो समझ आने लग जाती है बात, लेकिन जब खोल कर बयान न किया जाए तो ये मख्फी हालतें रहती हैं। इंसान समझता है कि ये तो बड़ी अच्छी तरकीद कर रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, फलां ओहदेदार है, फलां अमीर है, फलां कायद खुदामुल अहमदिया है, और उससे ये हरकत हुई है, इसका हक है, सारी दुनिया में इसको मुश्तहिर कर। हालांकि ये नहीं सोचता सुनने वाला कि अगर दिल में नेकी हो, अगर दिल में प्यार हो, अपने भाई की मोहब्बत हो, तो उसकी बुराई से खुश कैसे हो सकता है, तो उसकी बुराई का ढिंडोरा कैसे पीट सकता है। अपने बच्चों से कोई हरकत हो तो लोग पर्दे डाला करते हैं कि उनके ढिंडोरे पीटा करते हैं, अपने बच्चों से कोई नक्श जाहिर हो जाए तो इंसान छुपाने की कोशिश करता है, इंसान उनकी तलाफी माफात की कोशिश करता है, चाहे माफी मांगने पड़े, चाहे झुकना पड़े किसी के सामने, और मख्फी तौर पर छुप के अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन जब हसद हो तो फिर बिल्कुल बरक्स अमल होता है। तो इस किस्म के नाकदीन जो वो दोरा नुकसान का मुझे बन जाते हैं जमात के लिए। अव्वल सादा लो इंसान उनको पहचान नहीं सकते कि इनकी ये क्यों ऐसी हरकत कर रहे हैं, उनको ये नजर आता है कि हां गलती दुरुस्त है। अब हासिद के लिए जरूरी नहीं कि झूठ भी साथ बोले, बाज हासिद ऐसे हैं जो झूठ नहीं बोलते, वाकयात बयान करते हैं, लेकिन वाकयात का बयान दुनिया के लिए और जमात के लिए शदीद नुकसान का मुझे बन रहा होता है, नफरतों की आग फैला रहे होते हैं, और उसके अलावा नेकियों से उनकी नजरें हटा रहे होते हैं। एक शख्स की नेकियां काबिल कबूल हैं, उसकी बजाय उसकी बुराई को नुमाया करके दिखाते हैं, और फिर अदम एतमाद फैला देते हैं जमात में। लोग कहते हैं अच्छा जी ये उदेदार इस तरह के हैं तो बाकी गुना इस तरह करें। तो हसद की आग मख्फी आग की तरह अंदर अंदर फैलती है और नेकी को खाती चली जाती है, सोसाइटी के एतमाद को नुकसान पहुंचा रही होती है, और बजाहिर नेकी के नाम पर हसद चल रहा होता है। शरीका जिसको पंजाब में कहते हैं, शरीका, ये सारा हसद की बिना पर है, पूरी सोसाइटी मुतासर है इससे, बड़े बड़े फसाद होते हैं, बहुत बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं, खानदानी नाचाकियां, रिश्ते कट जाते हैं, और महज शरीके की वजह से। और इस शरीके को बजाय इसके कि हमारे मुआशरे में बुरा समझा जाए फख्र का मुझे बना लिया गया है। चुनाचे बाल जमींदार मुझे बताते रहे हैं कि हम जब जाते हैं शादियों पर तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि जिस शरीके के यहां शादी हो रही है अपनी अपने घर के बच्चे की या बच्ची की, कहते हैं पूरी कोशिश होती है कि उनका खाना खत्म हो जाए, चाहे उल्टियां करनी पड़े बाद में, हकीमों के पास जाना पड़े, इलाज करवाना पड़े, मेदे तबाह हो जाएं, लेकिन पूरा जोर लगाते हैं कि इतना खाओ कि अंदाजे उनके अंदाजे नाकाम हो जाएं और खाना बच जाए, हम कहें तो भाई नाक कट गई। ऐसी जहलाना हरकतें हैं। चुनाचे कुरान करीम ने खोल दिया कि मिन बाद मा तबय्यना लहुमुल हक, हक जानने के बावजूद हसद अंदा कर देता है। हसद ऐसी जहालत है कि दिखाता है कि तुम्हारा नुकसान है इसमें और उसके बावजूद हसद गलत इकदाम पर मजबूर कर रहा होता है। बाज दफा हसद ऐसे हैरत अंगेज लिबास पहनकर आता है कि आम नजर उसको महसूस भी नहीं कर सकती। एक सास बहू से हसद कर रही होती है इसलिए कि उसका बेटा सास अपनी मां के प्यार में अपनी बीवी को शरीक कर रहा होता है। अब बजाहिर तो कोई वजह नहीं, मां का प्यार और नौयत का है, उसकी पाकीजगी और चीज है, उसकी मिसाल ही कोई नहीं, और बीवी का प्यार बिल्कुल और नौयत का है। लेकिन हसद जब जोर मारता है तो इन दोनों प्यारों का आपस में मुकाबला करवा देता है और मां जलती रहती है कि मेरी इस लड़की की तरफ खावन ने इतनी तवज्जो की और मैं अब इसकी बुराई दिखाती हूं इसको, और खुद अपना नुकसान करती है, अपने घर का माहौल तबाह कर लेती है, अपने बेटे के लिए अपनी बहू के लिए दुख का मुझे बन जाती है। और बीवियां जब जलती हैं माओं से यानी अपनी सासों से तो खावन के कान भरती रहती हैं, उनके दिलों में मां के खिलाफ जज्बे पैदा करने की कोशिश करती है। तो हसद हर जगह काटने वाला काम करता है। मिन शर्र नफसात फिल उकद के बाद रखा है इसको, मिन शर्र हासिद इज़ा हसद, इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। हसद के नतीजे में ताल्लुकात टूटते हैं और जुदाइयां पैदा होती हैं, और हसद के फुकदान के नतीजे में यानी रश्क, अगर सच्चा रश्क हो और मोहब्बत हो और प्यार हो तो उसके नतीजे में वसल पैदा होता है, जुदाइयां हटती हैं। जितने भी मुआशरे में हमारे बाहमी ताल्लुकात में जुदाइयां पैदा करने वाले जज्बात हैं या जुदाइयां पैदा करने वाली हरकात हैं उनके पीछे आपको बसा औकात हसद काम करता हुआ दिखाई देगा, और हसद इंसान को कमीना भी बना देता है। हसद बिलाखिर नजर को इतना तंग कर देता है कि किसी की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। चुनाचे आपको ऐसे ताने भी मिलेंगे कि एक गरीब लड़की किसी अमीर घर में ब्याही आई है और वो खुश हुई है आकर, उसको अच्छा माहौल मिला, उसको आराम नसीब हुआ, उसको पहले पूरा खाना ठीक नहीं मिलता था या अच्छा खाना खाने उनको मिला। अब ये बात सास को भी तकलीफ दे रही है, नंदों को भी तकलीफ दे रही है, किसकी क्या हैसियत थी? ये तो सास कहती है मेरे बेटे की वजह से खा रही है ना, और नंदे कहती हैं हमारे भाई की वजह से खा रही है ना। तो जब तक वो इसका बदला ना उतार ले, जब तक इस खुशी को दुख में तब्दील ना कर दे, उनको चैन नहीं आता। बाज दफा तारीफ के बहाने बात करती हैं कि बड़ी अच्छी सेहत हो गई है, बड़ी मोटी हो गई है, इसके कपड़े तंग हो गए हैं। दूसरा कहेगा कि हाँ खाना जो भाई जो ख्याल रखता है, खाना खाता खिलाता पिलाता है, पहले कहां इसको नसीब थी ये बातें। अब वो जो कुछ बेचारी का खाया पिया है उसको जहर में बदल देते हैं। तो हसद अच्छी चीज को पकड़ता है और उसको गंदी चीजों में तब्दील करता चला जाता है। इसके मुकाबले पर मोहब्बत, सच्ची इंसानी हमदर्दी जो अल्लाह ताला से प्यार के नतीजे में, खुदा के तकवा के नतीजे में पैदा होती है, वो बुरी चीजों पर हाथ डालती है और उनको अच्छी चीजों में तब्दील करना शुरू कर देती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो मदहें गाई हैं, जो अजीब आसमानी गीत गाए हैं, उनमें इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि क्या गम था उस माहौल में गंदगी की गंदगी को अपनी मुट्ठी में लिया है और वो चमकते हुए सोने की डलियों में तब्दील कर दिया, कुंदन बना दिया। ये थे हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जो हासिद हसद करने वाले लोग हैं वो सोने की डलियों पर हाथ डालते हैं और उनको गंदगी में तब्दील करते चले जाते हैं। बस हर तरफ, हर रिश्ते में, हर ताल्लुक में, हर मामले में, नेकियों में भी और बदियों में भी, रूहानी और दीनी मामलात में भी, दुनियावी रोजमर्रा के इंसानी ताल्लुकात में भी, हर जगह आपको हसद अपनी कमीन गाहों में छुपा हुआ दिखाई देगा और हमला करेगा मुख्तलिफ नामों पर। कभी ये शौकनापा बन के जाहिर हो जाएगा, कभी बुग्ज़ो इनाद बन के जाहिर होगा, कभी अजीम मजहबी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर लेगा और फितना इर्तदाद होगा, लेकिन फिर बज़ाहिर फितना इर्तदाद मिटाने के नाम पर चल रहा होगा। अजीब व गरीब भेस बदलता है और नतीजा बिलआखिर, जैसा कि कुरान करीम में बयान फरमा दिया है, हर सूरत में यह निकलता है कि हसद करने वाले का नुकसान होता है, हसद करने वाला बिलआखिर मारा जाता है। जहां हसद मिलता है वहां कस घोला जाता है और जहर फैल जाता है। एक अफी की तरह है, सांप की तरह है हसद, जो दिल के तारीख गोशों में बैठा कुंडल मारे बैठा रहता है। जब मौका मिले ये अपना जहर फूंकता है और दूसरे की रगों में दाखिल कर देता है। इसीलिए फरमाया मिन शर्रे हासिदिन इज़ा हसद। नक्शा यही खींचा है कि हासिद कमीन गाह में इंतजार में बैठा रहेगा, रोजमर्रा की जिंदगी में हर वक्त उससे शर जाहिर नहीं होता। एक हासिद खूबियों को मालिक भी होता है बसा औकात। एक ऐसा भी हासिद हमने देखा है जो खुद गरीब की खिदमत कर रहा होता है, खुद हमदर्दियां भी रखता है, लेकिन जिनसे हसद है उनकी हर बात उसको बुरी लग रही होती है। इसलिए फरमाया मिन शर्र हासिद निजा हसद। ऐसे फितना परदाज इंतजार में बैठे होंगे, बजाहिर वो नेक नजर आ रहे होंगे, बजाहिर उनकी तरफ से किसी दूसरे को शर नहीं मिल रहा होगा, लेकिन अगर वो तुमसे हसद रखते हैं तो खबरदार, कोई ऐसा वक्त आएगा जब उनको मौका मिलेगा और वो जरूर हसद की कुचलियां तुम्हारे रगों में दाखिल कर देंगे। अपने रब से दुआ मांगो कि वो इस शर से बचाए। और यहां भी ये मजमून सारा कंसिस्टेंट चल रहा है, यानी एक दूसरे के साथ मुताबकत खाता है। चूंकि हसद को खुदा ताला ने एक मख्फी जहर के तौर पर जाहिर फरमाया और चूंकि बसा औकात इंसान मख्फी दुश्मन से आगाह नहीं हो सकता, अक्सर इंसान ये इस्तेताअत नहीं रखते कि छुपे हुए दुश्मन से आगाह हो जाए, इसलिए फरमाया मुझसे दुआ मांगना। इसका असल इलाज यह है कि मुझसे दुआ मांगो और बार बार मेरी तरफ मुतवज्जे हो और ये अर्ज किया करो कि मिन शर्र हासिद इज़ा हसद, ऐ बचाने वाले हमें हर हासिद के शर से बचा जब वो हसद करे। क्योंकि हमें पता कोई नहीं कि वो हासिद कौन है, हमें पता कोई नहीं कि वो हसद कब करेगा और किस रंग में करेगा। तो ये अमूमी तस्वीर जो हसद की कुरान करीम से हमें मिलती है, इसके पेश नजर मैं जमात को मुतनबे करता हूं, अगर वो बैरूनी हासिद से बचना चाहते हैं तो इसलिए उसके लिए भी जरूरी है कि वे अंदरूनी तौर पर हसद का कला कमा करें, वरना कोई जवाब नहीं है कि आप खुद हासिद हों और अल्लाह ताला आपको हासिदों से बचाए। हासिदों से बचाने की शर्त यह रख दी, फाफू वस्फहू, तुम में हसद के बिल मुकाबिल सिफात होनी जरूरी है। हसद के बिलमुकाबिल सिफात हैं अफव और सफा कल्ब, यानी इंसान बुराई को बाज दफा देखते हुए भी अपनी अगमास करता है, अपनी आंखें फेर लेता है और हसद उनको नुमाया करता है। हसद जुर्म को बख्श नहीं सकता, बल्कि इंतजार करता है कि कब कोई जुर्म करे और फिर मैं हमला करूं। और हसद के बरअक्स सिफात ये हैं कि इंसान जहां तक खुदा उसको इजाजत देता है जुर्म को माफ करने की कोशिश करता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने यह शर्त रखी है कि अगर तुम ऐसा करोगे, हत्ता याती अल्लाह बे अमरे, फिर जरूर खुदा अपने अमर को लेकर आएगा, तुम्हें गलबा अता करेगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। लेकिन इस बीच के रास्ते से गुजरे बगैर एक हसद से के हसद से बचने की तवक्को रखना और खुदा से तवक्को रखना कि वो बचा लेगा, ये दुरुस्त नहीं। जो शर्तें कुरान करीम ने बयान फरमाई हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। इसलिए आज के दौर में जमात अहमदिया पर पहले से बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि हर रंग में हसद से बचें। इस ये वो एक एक बुराई है जिसके पर्दे चाक करना नेकी है, यहां सत्तारी नेकी नहीं है। जहां जिस भेस में लिपटा हुआ हसद दिखाई दे उसके पर्दे फाड़ दें, उसको नंगा करके दुनिया में दुनिया के सामने जाहिर कर दें। क्योंकि बाज कीड़े ऐसे हैं जिनकी जिनका इलाज ही धूप दिखाना और हवा लगाना हुआ करता है। हसद को अगर आप नंगा करके जाहिर कर देंगे तो ये ऐसा कीड़ा है जो फिर बचता नहीं। ये जितना पर्दों में छुपा हुआ हो, जितना अंधेरों में रहे, उतना ज्यादा ताकतवर होता चला जाता है, उतना ज्यादा इसका हमला खतरनाक हो जाता है। इसलिए इसका तजिया करते रहें, अपने नफ्स को खंगालते रहें। अंदरूनी तौर पर जहां हसद का जज्बा आपको किसी बात के पीछे मुहर्रिक दिखाई दे, वहीं उसका सर कुचल दें। उतनी बात करें जो खालिसत नेकी के नतीजे में दिल से पैदा होती है। उन मुहर्रिकात को इख्तियार करें जो तकवा के नतीजे में पैदा होते हैं। और जहां दूसरे के अंदर आप तनकीद में हसद का जज्बा देखें, उसको प्यार और मोहब्बत से समझाएं कि तुम्हारी बात हक तो होगी मगर हक तरीक से नहीं कर रहे। इसकी वजह और है, हमें तुम्हारे अंदर बुख्स दिखाई दे रहा है। यही बुराइयां जब दूसरों में देखते हो तुम खामोश हो जाते हो, परवाह भी नहीं करते। फलां शख्स में चूंकि ये बुराई आई है इसलिए तुमने शोर मचाना शुरू कर दी। अगर तकवा है, अगर खुदा का खौफ है, तो अफ़व से काम लो और दरगुजर से काम लो, मोहब्बत और प्यार से उसको समझाने की कोशिश करो। और फिर अगर जरूरी है तो फिर जो खुदा तआला ने तरीके मुकर्रर किए हैं बुराइयों के इस्लाह के, उन तरीकों को बाकायदा अख्तियार करो। और इसी तरह मुआशरे में अपने घरों में खूब गौर से देखें कि आपके ताल्लुकात क्यों खराब हो रहे हैं। बसा औकात हसद के नतीजे में ताल्लुकात खराब हो रहे होते हैं और हसद थुड़दिली पैदा करता है, बहुत ही छोटा और कमीना बना देता है इंसान को। इसलिए बड़े हौसले वाले इंसान बने। आपने सारी दुनिया को अता करने हैं, अलग फजल अता करने हैं, हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अता करने हैं। उस वो दौर बहुत दूर नहीं है, वो करीब आ रहा है, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। अपने घरों से इन सब गंदों को साफ करना पड़ेगा ताकि आपके मेहमान साफ सुथरे पाकीजा माहौल में मेहमान बनकर आए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. حضرت جنازہ نہیں تھا کوئی غائب ہے؟ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ